फिर इसके बाद अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव है, और वो क्या है कि कर्ज की अदायगी नहीं कर पाए इससे कैसे अखलाकी तौर पे रोका जाए। अब इसको स्टेप्स में हम देखेंगे, अभी अखलाकी तौर पे फिर कानूनी, यानी अपने लफ्जों में इसको समझ लीजिए कि कोई कर्ज ले लेता है फिर नहीं देता, तो एथिकली कह लीजिए ये अखलाकी तौर पे ये कैसा अमल है। फिर अगला स्टेप हम देखेंगे कानूनी तौर पे, क्या हम उसको जेल में डलवा सकते हैं, कैद दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि मसाइल पड़े हैं ना, तो हमें हर एंगल से इसका पता होना चाहिए। तो इस्लामी शरीयत में वुस्सत के बावजूद कर्ज के बर वक्त अदा ना करने को संगीन बुराई करार दिया गया और शिद्दत के साथ इसे रोका गया। यहाँ हम तीन डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर बात करेंगे। पहली क्या कि अदम अदायगी और इसमें ताखीर, दोनों जुल्म है। कुरान और सुन्नत में इस बात को वाज़ेह किया गया कि इस्तेतात यानी कुदरत रखने के बावजूद कर्ज अदा ना करना या इसकी अदायगी में ताखीर करना जुल्म है। तो पहली बात नोट कीजिए कि अदा कर सकते हैं और अभी नहीं कर रहे कि नहीं, जरा लंबी किस्तें ले लेते हैं, ताखीर होगी ना, तो ये जुल्म है। किस पे? जिससे आपने लिया है उसके लिए। आप उस पैसे से फायदा उठा रहे हैं, अगले का बेचारे का नुकसान हो रहा है। आप कहते पैसा दे दो, 10 लाख दे दो, दे दिया। आप उस 10 लाख को कारोबार में लगाकर हर महीने उससे 1 लाख कमा रहे हैं, मिसाल है, तो जिसका 10 लाख, तो उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जुल्म होगा। आप मजबूरी में ले तो फिर उसको ऐसो नमाज वापस कीजिए। दलील है कुरान पाक में सूरह बकरा आयत 279, वइन तुबतुम फलकुम रुऊसुम वालिकुम ला तस्लिमून वला तुज़लमून। फिर अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारी असल रकम तुम्हारी होगी, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। आपको तो ये आयत किस हुक्म के बाद आई है? आयते रिबा के बाद, यानी सूद से तौबा करना हो तो असल मनी ले लो, ये नहीं कि आप कैपिटल भी डबो दो और बिल्कुल ही तुम्हारे पास कुछ ना रहे। इसके ऊपर इमाम अली कियालहर इस आयत की तफसीर में कहते हैं, यह आयत इस बात की दलील है कि मकरूज इस्तेतात के बावजूद अदा ना करने की सूरत में जालिम करार पाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसके मानी है कि सो तुम्हारे असल माल तुम्हारे होंगे, इसमें कर्ज खाक को असल रकम की वापसी के मुतालबे का हक दिया गया है, और जब इसको तकाजा करने का हक है तो लामहल्ला मकरूज पर इस रकम की वापसी लाजिम होगी। तो क्या पता चला कि वापिस करने की नीयत रखनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। इस बात से क्या पता चलता है कि मकरूज असल रकम अदा ना करने से जालिम करार पाता है, ठीक है ना, जुल्म हो गया ना दूसरे पे, चीज उसकी है, फायदा आप उठा रहे हैं। जैसा कि कर्ज असल रकम से ज्यादा का तकाजा करने पर जालिम है। देखिए जिसने कर्ज दिया है वो अपने दिए हुए से ज्यादा मांगेगा तो जुल्म होगा ना, किस पे? जिसने लिया। तो जिसने लिया वो दे भी सकता है फिर भी नहीं दे रहा, तो किस पे जुल्म हुआ? जिसने दिए, तभी तो फिर लोग देते नहीं। लोग कहते हैं आजकल कौन लेके वापस करता है, लोग बैंकों में रखवाई रखते हैं, बैंक वाले उसके ऊपर जो मर्जी कमा रहे हैं खा रहे हैं, आपको 2-4% देके खुश कर दें, वो आप मुतमईन है, वजह के वापसी की उम्मीद है। अपनों को लोग क्यों नहीं दे पाते, नहीं वापस नहीं करेंगे? अगर हम एक ऐसी एजुकेटेड सोसाइटी बनाए, मैं खुद आपको यकीन से कह सकती हूँ, अगर ये यकीन हो ना लोगों को कि जो दे रहे हैं वो वापस मिलेगा, तो हमारे खानदान के सब गरीब रिश्तेदार जो बेचारे हैंड टू माउथ है उन सबको अच्छे बिजनेसेस मिल सकते हैं। आप दीजिए उनको अपना 1 साल बाद वापस ले लीजिए, नीयत अच्छी होगी तो डूबेगा भी नहीं, डूब भी उनका ही जाता है जिनकी नीयत ठीक नहीं होती और प्लानिंग ठीक नहीं होती। तो बहरहाल ये टॉपिक बहुत कॉमन करने की जरूरत है, मुझे लगता है इसकी ऑडियोज को पाकिस्तान, इंडिया और ऐसे मुल्कों में जहां गवर्नमेंट नहीं मनवाती, यहां तो मैं गवर्नमेंट मनवा लेती है ना, किसी की भी डॉक्यूमेंटेशन है तो उसके ऊपर आप जरा अगेंस्ट जाएंगे, उनको पता है ये पुलिस को ले आएंगे। हमारे मुल्कों में आप घर किराए पे देके भूल जाए, मिलेगा जब देंगे तो मिलेगा, नहीं मिलता कभी भी, 4-4, 5-5 साल गुजर जाते हैं। तो लिहाजा इस टॉपिक को ज्यादा जरूरत है अपने मुल्कों में कॉमन करने की। बहरहाल नबी सल्लम ने भी इस्तेतात के बावजूद कर्ज की अदायगी में ताखीर को जुल्म करार दिया। इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा के हवाले से ये रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मालदार की तरफ से अदायगी कर्ज में टाल मटोल जुल्म है। टाल मटोल क्या आता है? आज देते हैं कल देते हैं, लारे लगाना, और क्या कहते हैं इसको, डिलेइंग टैक्टिस, बिल्कुल। हाफिज इब्ने हजर ने हदीस शरीफ की शरह में लिखा और मानी यह कि आजिज के बरक्स दौलतमंद के लिए कर्ज की अदायगी के वाजिब होने के बाद टाल मटोल करना हराम है। तो क्या पता चला कि टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अब आप नहीं देना चाहते तो आपका क्या ख्याल है कि आपने वो पैसे बचा लिए जो कर्ज में किसी से लिए थे? नहीं, कर्ज की वापसी में बदनीयती पर अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देता है। ये नोट करें, ये हमारे मुल्कों के कारोबारी हजरात को बताने की जरूरत है। आप कहते हैं कर्ज लिया था, दें कैसे, हमारा तो डूब गया। ये शायद कभी कभी अल्लाह भी डूब देते हैं। क्यों डूबो देते हैं? कि उसने नियत कर ली थी मैंने कौन सा देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड़प करने के इरादे से लोगों का माल लेने वाले के बारे में ये वईद सुनाई कि अल्लाह ताला इसको बर्बाद कर देते हैं। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से नकल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग यानी लोगों के मालों को बर्बाद करने की गरज से ले तो अल्लाह ताला इसको बर्बाद कर देते हैं। क्या मतलब है इसका? हाफिज इब्ने हजर कहते हैं इसके बारे में, इसका जाहरी माना यह है कि इसके लिए ये बर्बादी दुनिया ही में इसकी मईशत या जान में होगी, यानी या तो इकोनॉमिकली गिर जाएगा या फिर बीमारी आ जाएगी जिस्म पे। और ये बात मुशाहदे से है कि नबी सल्लम की नबूवत की सदाकत की निशानियों में एक निशानी है। ये भी कहा गया कि बर्बादी से मुराद अजाब आखरत है, दुनिया में भी जाता है। मुझे तो पूरा इस पर यकीन है कि जो किसी का देना नहीं चाहता फिर उसका दुनिया में भी नहीं रहता। अच्छा, ये तो दुनिया का नुकसान था। अब अगला टॉपिक है कि अदम अदायगी के आखिरत में क्या नतायज होंगे, तो संगीन असरात होंगे। अल्लाह के नबी ने कर्ज के वापस ना करने के आखिरत में संगीन नतायज बयान करके उम्मत को कर्ज की अदायगी की रग़बत दिलाई। यहाँ हम चार डिफरेंट टॉपिक को देखेंगे अहादीस की रोशनी में। नंबर एक, अब ये इसको बल्कि आप एक अलग क्लिप बना सकते हैं, ये छोटी से जो नोट्स हैं इसको लेकर आप एक छोटा सा क्लिप बना लीजिए। पहला नुकसान क्या होगा कि कियामत के रोज ऐसा शख्स चोर बनकर पेश किया जाएगा। रोजे कियामत बतौर चोर पेशी होगी। इमाम तबरानी ने मैमून कर्दी से ये रिवायत की कि उनके बाप ने नकल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस इरादे से कर्ज तलब किया कि हकदार को इसका हक वापस नहीं करना, फिर इसने दगे से इसका माल ले लिया और कर्ज अदा किए बगैर फौत हो गया, तो अल्लाह ताला से चोर की हैसियत में मिलेगा। पीछे आपको बताया था ना, हक मेहर बांधे बीवी का लेकिन नियत ये रखे कि देना नहीं है, तो उसके लिए भी वईद है कि क़यामत के दिन वो मुजरिम होगा। और इसी तरह से कर्ज लेना लेकिन देने की नीयत ना होना क़यामत के दिन चोरी की हैसियत में। दूसरा नुकसान आखिरत में क्या होगा किसी को पैसे वापस ना करने का, क्या अपनी नेकियों से महरूमी होगी। इमाम इब्ने माजा इब्ने उमर से रिवायत नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मम मा तवाले ही दीनार औ दिरहम कुदी यमिन हसनाती ही लई ससम मदीनार वला दरहम। जो शख्स फौत हुआ और इसके जिम्मे दीनार या दिरहम हो तो इसकी नेकियों में से बदला दिया जाएगा, महारोजे क़यामत कोई दीनार या दिरहम नहीं होगा। दुनिया में क्या करते हैं भला लोग, किसी ने कर्ज लिया हुआ है और वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा तो फिर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी उसकी लेते हैं ना, कुर्क करना जिसको बोलते हैं उर्दू में। बैंकरप्सी भी क्या होती है, घर ले लिया, उसकी गाड़ी ले ली, उसके एसेट्स ले लिए, तो क़यामत के दिन हमारे एसेट्स क्या होंगे, हमारे डीड्स होंगे, तो फिर उसमें से जाएगा। चाहते हैं हम लोग हमारी तहज्जुदें चली जाए और हमारा मुश्किल से दीन सीखना चला जाए। कितनी मेहनत करता है बंदा, अपने नफ्स को मार के दीन का कोई काम करता है, कोई नेकी का काम करता है, पता चला वो चली गई। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। और ये तो बहुत ही खतरनाक बात क्या है कि शहादत के बावजूद भी कर्ज माफ नहीं होता। इमाम मुस्लिम ने अबू कतादा से ये रिवायत नकल की कि अल्लाह के नबी ने इनके रूबरू खड़े होकर यानी इनके आमने सामने खड़े होकर बयान फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद और अल्लाह ताला के साथ ईमान लाना सब अमाल में से आला अमाल है। ये सुनकर एक शख्स उठा और अर्ज किया, अल्लाह के नबी आप इस बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं तो क्या मुझसे मेरी खताएं दूर हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जवाब दिया, नाम हाँ, अगर तुम इस हालत में अल्लाह की राह में कत्ल किए गए कि तुम सब्र करने वाले, सवाब तलब करने वाले, पेश कदमी करने वाले और पुश्त फेर कर भागने वाले ना थे। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, कई फकुलता तुमने कैसे कहा। उन्होंने अर्ज किया, यानी आपने एक दफा तो उसको जवाब दे दिया कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन फिर का क्या कहा आपने, तो कहा कि अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं तो क्या मेरी खताएं मुझसे दूर की जाएंगी, यानी क्या शहादत गुनाहों की माफी का जरिया बनेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम वन तसाबिर मुहतसिब, हाँ और तुम सबर करने वाले, अजर तलब करने वाले, पेश कदमी करने वाले हुए तो मगर कर्ज। देखिए हदीस के अंदर लफ्ज देख लीजिए, इल्लत दईन, इसको हाईलाइट कर ले सिर्फ इतने लफ्ज को, ये जो हाईलाइटेड लफ्ज होते हैं ना ये नजरों में घूमते हैं, इल्लत दैन, कर्ज नहीं माफ होगा। और कहा क्योंकि जिब्राइल ने अभी मुझसे ये कहा, पहले दो तीन दफा आप खुद कह चुके हैं ना, तो कहा हाँ सब माफ हो जाएगा। उसमें फजीलत किसकी हुई, शहादत की, कि शहादत इतना बड़ा अमल है कि सारे गुनाह माफ होंगे, लेकिन बाद में जिब्राइल ने आके एड ऑन करवाया कि नहीं लेकिन कर्ज नहीं माफ होगा। तो क्या पता चला कि शहादत का मर्तबा इतना बड़ा कि सारे गुनाह माफ होंगे लेकिन कर्ज इतनी बड़ी कबाहत कि वो शहादत से भी माफ नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है, इमाम नवी कहते हैं इस बारे में बाप में कि बाप मन कुतिल फी सबीलिल्लाही कुफिरत खताया इल्लद्दैन, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उसके कर्ज के सिवा तमाम गुना मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इमाम नबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी के इस इरशाद मगर कर्ज यानी इल्लद्दैन में ये तंबीह है। तंबीह किसको कहते हैं? वार्निंग। कि जिहाद, शहादत और इस तरह के दीगर नेक अमाल की बिना पर हकूकुल्लाह के मुतल्लिका गुना मुआफ़ होते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद से मुतल्लिका गुना मुआफ़ नहीं होते। क्योंकि आप आदत समझे, शहादत अल्लाह के साथ मामला है ना, कर्ज किसका ताल्लुक है? इंसानों का। तो अल्लाह के मामले में नेकी की ना, तो बंदों के मामले से छूट नहीं मिल सकती। अब आप इसको इमेजिनेशन में लाएं, आपको कहते हैं कि शहादत का कितना बड़ा मर्तबा है। रिवायत में आता है कि जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको अल्लाह ताला फौरन जन्नत में भेज देते हैं ना। ऐसी रिवायत में आता है कि एक दफा अल्लाह ताला एक शख्स को जहन्नम से निकालेंगे, पूछेंगे सुनाओ भाई मेरी जहन्नम कैसी मिली? तो वो कहेगा अल्लाह ताला बड़ी बुरी है तेरी जहन्नम, बहुत बुरी है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो कहेगा मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए और मैं वापस जाऊँ और अच्छे काम करूँ। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि फरिश्तों जाओ इसको वापस आग में डाल दो, इसकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी होगी। फिर अल्लाह ताला जन्नत में से उन लोगों में से बुलाएंगे जिसको शहादत का मर्तबा हासिल हुआ, बुलाकर कहेंगे सुनाओ भाई मेरी जन्नत कैसी मिली, कैसी लगी? तो कहेंगे अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत है। कहा जाएगा कोई ख्वाहिश है? कहेंगे एक ख्वाहिश है। क्या? अल्लाह ताला वापस दुनिया में भेज। जो खुशी और जो लुत्फ और लज्जत तेरे रास्ते में जान कटाते हुए मिला था ना, उसको जन्नत में भी मिस कर रहे हैं। कहा ये नहीं होगा। यानी वापस दुनिया में क्यों जाना चाह रहे हैं? कि दोबारा शहीद होके वापस आए, इतना बड़ा अमल है। लेकिन कर्ज उससे भी माफ नहीं है। लग रहा है ना कि ये कांटो मरा रास्ता है और पता नहीं किस किस के ले लेके भूले हुए, पता नहीं किधर किधर किसको देना किसका लेना। तो इसलिए मामले को सीधा रखने की जरूरत है। चौथा नुकसान क्या होगा? कर्ज की अदायगी ना करने का दखूले जन्नत में रुकावट होगी। तीन अहादीस हैं इसमें, तिर्मिजी, इब्ने माजा और इब्ने हब्बान रवायतें हैं इनकी। यानी इन आयमे कराम ने बयान किया हजरत सोबान से, अल्लाह के नबी ने फरमाया मम माता बहुवा बरी मिन अल किबरी वल गुलूली वद दैनी दखल अल जन्ना। जो शख्स तकब्बुर, गनीमत में खयानत और कर्ज से मुबर्रा फौत हुआ, नोट करें बड़े बड़े गुना है ना, तकब्बुर, माल गनीमत में चोरी करना, इसके साथ कर्ज को जोड़ दिया, इससे अगर कोई बरी फौत हुआ तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। इब्ने हब्बान इस हदीस पर जो टॉपिक रखते हैं, इस शख्स के जन्नत में दाखिले के वाजिब होने का जिक्र, जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो और वो कर्ज और गनीमत में खयानत से पाक हो। बात समझ गए? शेख मुबारक पूरी हदीस की शरह में लिखते हैं, इस हदीस से ये बात भी समझी जाती है कि बिलाशुबा जो शख्स फौत हुआ वो इन तीन बातों से मुबर्रा ना हुआ तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये आखिरी जुमला हाईलाइट कर ले। कैसे समझ आया कि कर्ज छोटी चीज नहीं है? इसी तरह इमाम तिर्मिजी, इब्ने माजा, हाकिम और बगवी ने अबू हुरैरा से रिवायत नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको आप ना अरबी में मेरे साथ भी पढ़िए और अपनी बुक में हाईलाइट कीजिएगा, नफ्सुल मोमिनी मुअल्लकतुन बिदैनिही हत्ता युक्दा अन्हु। मोमिन की जान कर्ज के साथ मुअल्लक रहती है। कर्ज सर पे हो ना तो मैयत जिस्म से निकलती है लेकिन जान लटकी रहती है। मुअल्लक समझते हैं, हैंगिंग। नफ्स मोमिन के मुअल्लक रहने से क्या मुराद है? अब ये तो हदीस के अल्फाज हैं, इसकी शरह क्या है? मुराद ये कि अदायगी कर्ज तक इसका जन्नत में दाखिला रोक दिया जाता है, वेटिंग लिस्ट में, यहाँ तक कि अगर वो जामे शहादत भी नोश कर ले तब भी कर्ज का वापस ना करना इसको जन्नत में रोकने का सबब बन जाता है। और अगली हदीस में इसकी मजीद वजाहत है। निसाई, हाकिम और बगवी में रिवायत है मोहम्मद बिन जहश से, उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के नबी के साथ बैठे हुए थे, आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, फिर अपनी हथेली को पेशानी पर रख दिया, फिर इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाह माज नजला मिन तशदीद, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, किस कदर सख्ती नाजिल हुई है। हम चुप रहे और खौफजदा हो गए, यानी पूछा भी नहीं कि क्या हुआ। दूसरे रोज मैंने रसूलुल्लाह से दरियाफ्त किया या रसूलुल्लाह मा हाज़ा तशदीदुल्लज़ी नज़ला, अल्लाह के नबी नाजिल होने वाली ये सख्ती क्या थी? उस वक्त नहीं पूछा, अदब देखिए, जुरत नहीं थी और खौफ ज़दा कितने हो गए। आपने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वो जात जिसके हाथ में मेरी जान है, लवन्ना रजुलन कुतिला फी सबीलिल्लाह, अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, सुम्मा उखिया फिर जिंदा किया जाए, सुम्मा कुतिला फिर कत्ल किया जाए, सुम्मा अहया फिर जिंदा किया जाए, सुम्मा कुतिला फिर कत्ल किया जाए, वालेही दईन, और उसके जिम्मे कर्ज हो, मा दखल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कब तक, हत्ता युकदान हुदैनहू, जब तक इसका कर्ज अदा न किया जाए। 3 दफा शहीद होके कोई दुनिया से वापस चला जाए फिर भी कर्ज माफ नहीं होगा। लग रहा है ना मिटने वाला धब्बा है कर्ज। कभी कभी स्टेन्स होते हैं, पानी से उतर जाते हैं, साबुन से उतर जाते हैं, कुछ में जो स्टेन रिमूवर डाले फिर भी नहीं उतरते। मुझे तो कर्ज कुछ ऐसा ही लग रहा है। सच बताएं कि आज हमारे माशरे में इसको इतना बड़ा समझते हैं? फिर दोहरा दूं कि सिर्फ कर्ज की बातें हैं, कर्ज के साथ कोई दूसरी कबाहत की बात तो अभी आई नहीं। ये तो सिर्फ जेन्युइन कर्ज है। इसको वो कर्ज ना कि जिसको दूसरे कह देते हैं कि ये भी जायज है, यानी अभी तक लव सूद नहीं आया आपकी बुक में। इस एंगल में सिर्फ कर्ज की इतनी बात है तो सूद भरे कर्जों के साथ क्या होगा? उसके साथ जी के फिर क्या हो रहा है उन मरने वालों के साथ? अल्लाह नोज दी बेस्ट। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने इस हकीकत को वाज़ह फरमाया कि वाजिब ज़िमा कर्ज 3 दफा जामे शहादत नोश कर लेने वाले शख्स के लिए भी जन्नत में जाने की रुकावट बन जाता है। तो क्या आपके दिल पे गुजर रही है इस बात को सुनते हुए? कोई बात ऐसी बोलिए कि जिससे आपको लगे कि वाकई आपने इस चीज से फायदा उठाया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
अक्टूबर 2014 में मैंने आयत पढ़ी थी कर्ज की, तो फिर मुझे लगा कि अपने आप से मुझे कर्ज को हटाना है। और जारी बात है ऐसे राइट अवे मीनिंग्स मींस नजर नहीं आ रहे थे, जारी बात है क्योंकि सच अ बिग अमाउंट एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू के। लेकिन मैंने अल्लाह सुब्हान तआला से उसी दिन ही अक्टूबर के ही किसी जो भी डेट थी उस दिन मैंने रात को अल्लाह तआला से दुआ करी, अल्लाह तआला मैं नहीं जानती कि कहाँ से पैदा अदा होना है मेरा कर्ज, मेरा कर्ज आपको अदा करना है किसी भी तरह, क्योंकि मैं इसमें एक दिन भी नहीं रह सकती। और जैसे ये तेरी बात है अपने घर के हालात इंसानी खराब कर सकते हो ना, अपने हस्बैंड ने तो नहीं सुना, मैंने सुना है तो उनका दिल तो नहीं बदला, मेरा बदला था। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अल्लाह ताला मैंने कहा कि आज मैं कैलेंडर में लिख रही हूँ आज अक्टूबर की 15 तारीख है और मैं आप दिसंबर की 16 तारीख तक चाहती हूँ कि मेरा कर्जा पूरा हो जाए। आप तो यकीन नहीं कर सकते, मैं खुद भी इस बात का आज तक यकीन नहीं कर पाती। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे जरिए बनाए, ऐसे ऐसे जरिए बनाए कि आज तक मेरी अकल हैरान है कि कहां से मेरी मांगी भी बात को अल्लाह ताला ने इतना मान रखा कि एग्जैक्टली दिसंबर में मेरा 90% कर्जा अदा हो चुका और बाय मार्च इट वाज डन 100%।
ये आपने खुद 2-3 महीने ज्यादा लिए थे, अल्लाह ने इससे कम में भी कर देना था। अल्लाह ताला इज़ला कुल्ली शैइन क़दीर, आप और मैं तो नहीं जानते कि वो क्या कर सकता। देखिए बोझ ना लाद के फिरे। मैं कहती हूँ जिंदगी एक बार मिली है, इसको आजाद फजाओं में जी के सोके आप दुनिया में आ जाएंगे, आप फील करेंगे कि असल जिंदगी है। आप देखिए आज जाहरी तौर पे कितनी आसूदगी है, खुशहाली है ना, घर गाड़ियां कोठियां बंगले, यानी इन सब चीजों को देखे तो शायद आज भी कुछ लोग हमारे मुल्कों में रहने वाले इन चीजों पर रश करें, लेकिन क्या दिलों में खुशी है, आपस में मोहब्बत है? वजह कि अल्लाह जब एक चीज से मना कर देता है तो वो चीज हमें खुशी कहाँ दे सकती है। चौथी बहस है अब इस टॉपिक की कि कर्ज की वापसी के लिए कानूनी इकदाम क्या है। अभी तो हम इसको गुनाह सवाब पे लेके बैठे हुए हैं ना, दुनिया में सवाब आखिरत में फायदा, दुनिया में गुनाह सवाब, लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं कर्ज के, क्योंकि ये बहुत अहम मसाइल है। बाद जब हम लीगली पकड़े होते हैं किसी चीज में हमें पता ही नहीं होता। शरीयत इस्लामिया में कर्ज की अदायगी के लिए सिर्फ हुक्म और तरगीब व तरहीब पर इक्तफा नहीं किया गया। तरगीब क्या होती है? रगबत दिलाना, मोटिवेशन, और तरहीब डराना, वॉर्न करना। इक्तफा करना मीन ओनली यही नहीं किया गया। क्या चीज इक्तफा क्या हुआ, यानी इसी को काफी नहीं समझा गया, बल्कि ऐसे कानूनी इकदामात भी तजवीज किए गए हैं जो कि मकरूज को अदायगी में टालमटोल और ताखीर से रोकने और कर्ज की वापसी को यकीनी बनाने में मुअसर किरदार अदा करते हैं। इनमें से कुछ इकदामात मकरूज की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं और कुछ इसके माली मामलात पर गहरा असर छोड़ते हैं। यहाँ हम 2 मुख्तलिफ उनवानों में बात करेंगे। पहला क्या है? मकरूज पर शख्सी असरात वाले कानूनी इकदामात, और फिर मकरूज पर माली असरात वाले कानून। शख्सी असरात क्या होते हैं? पर्सनैलिटी से मुतल्लिक, आइए देखते हैं। مقروض پر شخصی اثرات والے قانونی اقدامات. اسلامی شریعت میں قرض کی ادائیگی میں تاخیر اور قرض کے ادا نہ کرنے کی صورت میں شخصی اثرات والے ایسے کئی قانونی اقدامات ہیں جو مقروض کو بر وقت ادائیگی پر مجبور کرنے یا کم از کم اس کی طرف مائل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. چار ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. اقدام کہتے ہیں قدم یعنی اسپیکٹس کہہ لیجئے. پہلی بات یہ کہ جو شخص اس طرح کا ہے جو قرض نہیں دینا چاہتا نہیں دے رہا تو فاسق قرار دیا جائے گا اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. امیجن کریں ذرا, نکاح کے گواہ لائیے جی, یہ لڑکی کا ماموں, یہ لڑکی کا چچا, یہ فلاں کچھ بھی آتے ہیں نا آپس میں, ایک دم کہا جاتا ہے ان کے اوپر کوئی قرض تو نہیں جو انہوں نے نہیں دیا یا نہیں دینا, ان کی گواہی نہیں ہوگی, چلے اٹھیں کسی اور کو لائیں. انڈرسٹینڈ کریں جی, فاسق قرار دیا جاتا ہے ایسا شخص. پھر دوسری چیز عزت کا مباح ہونا, قید میں ڈالنا اور سفر پر پابندی. آئیے ایک ایک کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی کا آپ نے قرض لیا تو اس کو آپ کے اوپر کتنا زیادہ حق ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے پوچھے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتے. جی, آپ کہاں گھومتے پھر رہیں گے. فاسق قرار دینا اور گواہی کا مسترد ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ دولت مند کا قرض کی واپسی میں ٹال مٹول ظلم ہے, اس سے استنباط کرتے ہوئے یعنی اس سے ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے جمہور علماء امت نے یہ تحریر کیا کہ ایسا شخص فاسق قرار پاتا ہے اور اسلامی عدالتوں میں گواہی دینے کی اہلیت سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی ایسے شخص کی گواہی کہیں قبول نہیں ہوگی. آپ بتائیں کوئی گواہی دینے کے قابل رہ جائے گا پھر قبول, کیونکہ یہ جھوٹا ہے, دے سکتا نہیں دے رہا, دینے کی نیت نہیں ہے, ٹال رہا مٹول کر رہا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں حدیث میں لی تو لال کرنے پر ڈانٹا, لی تو لال وہی آگے پیچھے کرنا, اس بارے میں اختلاف ہے کیا ایسا عمدن کرنا, عمدن کہتے ہیں نیت ارادے سے, کبیرہ گناہ ہے یا نہیں. یعنی گناہ تو ہے یہ سب مانتے ہیں, کس درجے کا گناہ ہے, کبیرہ کہ صغیرہ, یہ پتا کریں گے. جمہور کے نزدیک ایسا کرنے والا فاسق قرار پا جاتا ہے. اور آپ کو تو فاسق کون ہوتا ہے, دین کی حدوں سے نکلنے والا, پڑھ چکے آپ لوگ. لیکن کیا اس پر فسق کا حکم ایک ہی مرتبہ ٹال مٹول سے چشمہ ہوتا ہے یا نہیں, یعنی بس ایک دفعہ ٹالنے سے کوئی فاسق بن جائے گا یا اس کی عادت بن گئی ہے تو. امام نووی نے کہا کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ حکم فسق لگانے کے لیے کئی مرتبہ ایسا کرنا شرط ہے, یعنی جس کی عادت بن جائے ٹال مٹول کی اس کے لیے یہ شرط ہے. شرح منہاج میں سبکی نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا ہمارے مذہب کا تقاضا ہے کہ حکم فسق لگانے کے لیے تکرار شرط نہیں. یہ دوسرے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی ٹال مٹول کرنے والا فاسق بن جائے گا. اس لیے انہوں نے یہ دلیل دی کہ مطالبے کے بعد حق کو ادا نہ کرنا اور اس کی واپسی میں بہانہ بنانا غصب کی مانند ہے. غصب کیا, کسی کی چیز کو چھین لینا, زبردستی چھین لینا, اور غصب کبیرہ گناہ ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ظلم کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور کسی گناہ کے کبیرہ ہونے کے لیے تکرار کی شرط نہیں. بات واضح نا, کوئی کہہ دے ایک دفعہ کوئی زنا کر لے تو اٹس اوکے, بار بار کرے گا تو کبیرہ ہوگا, ایسا تو نہیں ہے نا. تو پھر کون سی بات واضح ہے, ایک دفعہ بھی کوئی ٹال مٹول کرے تو وہ فاسق بنے گا. عزت کا مباح ہونا کیا, مباح کس کو کہتے, جائز, اباحت. قرض کی واپسی میں لی تو لال کرنے سے مقروض اپنی عزت کی حرمت کھو دیتا ہے. امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت شریط بن اوس ثقفی سے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت اور سزا کو حلال کر دیتا ہے. کیا مطلب سمجھ آتا ہے اس کا, یعنی عزت کو ٹال مٹول کرنا, اس پہ امام بخاری کہتے ہیں باب کیا باندھتے ہیں کہ حقدار کے تقاضا کرنے کے حق کے متعلق باب, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ دولت مند کا لی تو لال اس کی عزت اور سزا کو حلال کر دیتا ہے. اور ابن حبان اس حدیث پر کہتے ہیں کہ ٹال مٹول کرنے والے کے غنی ہونے کی صورت میں ٹال مٹول کی وجہ سے نفس اور عزت میں سزا کا مستحق ہونے کا بیان. ان سب نے جو بات کی نا اس کا خلاصہ کیا کہ عزت کے حلال ہونے کا کیا معنی ہے, آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوگا تو آئیے دیکھیں اس کے مختلف اقوال کہ اس کی عزت حلال ہے کیسے. امام سفیان اس کی شرح میں کہتے ہیں قرض خواہ کو اپنی زبان سے اس کو اذیت دینے کا حق ہے. سمجھ گئے, قرآن کیا کہتا ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم, چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کا برا ذکر کیا جائے. ہاں مگر من ظلم, جس پہ ظلم و वो बोल सकता है। तो यहाँ जिस शख्स के पैसे देने थे उसको अल्लाह हक दे रहे हैं कि जिसने उसका कर्ज नहीं दिया वो उसकी बुराई बयान करे। तो जब बुराई बयान की तो इज्जत हलाल हो गई ना, यानी उसकी बेइज्जती कर सकता है। आप लिख ले अपने लिए, इज्जत के हलाल होने से मुराद है कि उसकी बेइज्जती कर सकता है, ये मुराद है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था हज्जतुल विदा के मौके पे कि तुम्हारी जान माल इज्जत एक दूसरे पे हराम है ना, तो इज्जत दूसरे को बेइज्जती नहीं आप कर सकते। आप किसी की राह चलते बेइज्जती कर दें ये मना है, लेकिन जिसने किसी का कर्ज लिया और वो जानबूझ के वापस नहीं कर रहे तो वो उसकी बेइज्जती कर सकता है। और इसको लीगल टर्म्स में बोल लें कि वो उसको नोटिस भेज सकता है, वो उसके लिए वारंट भेज सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। इमाम वकी कहते हैं इसके बारे में कि वो लोगों के रूबरू इसकी अदम अदायगी का तذکرہ बतौर शिकवा कर सकता है। बाद लोग बातों से डर जाते हैं ना कि लोग बातें करेंगे तो फिर वो बातें कर सकते हैं। इमाम अब्दुल मुबारक इसके बारे में कहते हैं कि वो इसके साथ सख्त कलामी कर सकता है, यानी हार्शली इससे बात कर सकता है। इसी तरह लामा अली तनाफसी कहते हैं कि वो बतौर शिकवा इसकी अदम अदायगी का लोगों में तذکرہ कर सकता है। ने हजर इसकी शरह में कहते हैं कि इसको लोगों के रूबरू जालिम जिक्र करना जायज है। और शर्फुद्दीन अजीम आबादी इसके बारे में लिखते हैं कि मानी यह है कि जब दौलतमंद कर्ज की वापसी में देर करे तो कर्ज ख्वाह के लिए जायज है कि इसके साथ सख्त कलामी करे, इसकी बेइज्जती और बेहरमती में शिद्दत का रवैया अख्तियार करे। इसी तरह काजी कौन होता है, जज, इसको भी तादीब की गरज से, तादीब के अदब सिखाने, तादीब अदब सिखाने की गरज से इसके साथ सख्त कलामी करने और इसको कैद करने का हक है, क्योंकि वो जालिम है और जुल्म हराम है अगरचे वो थोड़ी ही हो। आपको यह इस्लाम सख्त तो नहीं लग रहा, सख्त तो नहीं लग रहा, अदल के साथ है। आप देखिए, वरना तो दुनिया में हमेशा बुरे लोगों को ही साइड मिल जाए। हमारे यहाँ कहते नहीं, ये मकरूज है, ये अच्छा ही होगा, ये कर्ज जिसने दिया ये क्यों इस पे सख्ती कर रहा है। लेकिन देखिए, जब दोनों तरफ से बात नहीं होती तो फिर सारा सिस्टम बिगड़ता है। इसी तरह शेख शुएब अरनाउत कहते हैं नबी सल्लम ने इसकी इज्जत के हलाल होने से ये मुराद ली है कि कर्ज ख्वाह को इसकी मलामत और मजम्मत करने और अदायगी में बुरे होने के जिक्र का हक हासिल है। तो सारी बातों में फिर ये बात साबित हो गई कि तवंगरी यानी दौलतमंदी के बावजूद कर्ज की वापसी में टाल मटोल करने वाले की तशहीर मीन उसको पब्लिसाइज करना, शोहरत करना, जदीद ज़राए इब्लाग यानी मीडिया में भी की जाए। अब टीवी में ये इश्तेहार देने शुरू कर दें, फलाह ने मेरा कर्ज वापस नहीं किया, फेसबुक पर डाल दिया जाए, और ये तदबीरें इसको लीतो लाल की बजाय अदायगी पर आमादा करने में मुअस्सर साबित होंगी। चलिए, ये तो जुबानी कलामी बेइज्जती थी, अगली बात है कैद में भी डाला जा सकता है इसको। इस हदीस में ये बात भी है कि दौलतमंद शख्स का कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना इसकी सजा को हलाल करता है। उलमाए हदीस ने सजा को हलाल करने के बारे में जो बात कही उसके चंद अकवाल, इमाम बहकी कहते हैं मुराद के कि इसकी सजा यह है कि इसको कैद में बंद किया जाए। आप देख रहे हैं ना, हदीस के एक एक लफ्ज़ पे बहस होती है, पीछे हुई थी इज्जत पे और अब यहाँ बात हो रही है सजा पे। इमाम वकी कहते हैं अकूबतहु हब्सुहु, इसको कैद करना इसकी सजा है, यानी ऐसे शख्स को कैद कराया जा सकता है। फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं इसकी सजा यह कि इसको कर्ज ख्वाह के लिए कैद कर दिया जाए। इमाम अली तनाफशी कहते हैं कि इसकी सजा इसको कैद में डालना है। और हाफिज इब्ने हजर कहते हैं इस हदीस के बारे में, इस हदीस से अदायगी की कुदरत रखने वाले मकरूज को अदब सिखाने और इस पर सख्ती की गरज से कैद करने का हलाल होना, मशरूयत कहते हैं शरण हलाल है, मशरूयत पर इस्तदलाल है। खुलासा क्या है कि ऐसे शख्स को कैद भी किया जा सकता है, उसकी बेइज्जती भी की जा सकती है, और शरण ये हलाल है। हज़रत शुएब अरनाउत कहते हैं कि नबी सल्लम का इसकी सजा से मकसूद इसको कैद में डालना है। और काजी शुरैह कर्ज के वापस ना करने पर मकरूज को कैद में बंद करने का हुक्म दिया करते थे। कितने बड़े काजी गुजरे अपने दौर के। इमाम इब्ने अबी शैबा इब्ने सीरीन से रिवायत करते हैं कि शुरैह कर्ज की अदम अदायगी की बिना पर कैद करने का हुक्म देते थे। तो आज अगर ये निज़ाम नाफिज हो जाए तो सारे ही मकरूज है वो जेल में चले जाएं तो ठीक हो जाएंगे। या जो हमारे मुल्कों में कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी से कर्ज वापस लेना जा पड़े ना, कहते हैं बदमाशों को साथ लेके जाओ, फलां ग्रुप को ले जाओ, उनके लोगों से जाके घर खाली कराओ, हम तो नहीं करा सकते, ये हालात हो गए। तो फिर उस मुल्क में जलजिले ना आए तो और क्या है, उधर इतनी बेबसी ना हो तो और क्या हो, हम खुद अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं। देखिए, इस्लाम फेयर दीन है, हम एक दफा दूसरे की तरफ झुक जाते हैं, गरीबों से झुक जाएंगे, या जो कानून तोड़ते हैं हम उनको बहुत साइड देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप इवन रहिए, फिर देखिए अल्लाह ताला کتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. اسی طرح امام شابی بھی عدم ادائیگی کی صورت میں قید کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ ضرور قید کیا جائے اس کو. امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ نے کہا, جب میں قرض کی عدم ادائیگی کی صورت میں قید نہ کروں تو خود میں نے اس کے حق کو ضائع کر دیا, یعنی اللہ نے حق دیا کہ ایسے بندے کو قید کیا جائے. امام شابی کی نگاہ میں عدم ادائیگی کی صورت میں قید کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرض کی عدم ادائیگی کی بنا پر قید کرنا زندگی ہے. کیسے بھائی؟ یہ تو مجھے وہ قرآن کی وہی آیت یاد آ رہی ہے کہ ان لکم فی القصاص حیات یا اولی الابصار, کہ عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. وہ کیسے ہوگا بھلا؟ اس کی وجہ کیا کہ پھر باقی لوگ نہیں ایسا کریں گے. ایک دفعہ جب ایسی سزائیں ملنے لگ جائیں گی تو اس کے بعد پھر لوگ کیا کریں گے؟ رک جائیں گے اس برے فعل سے. اسی طرح قاضی ابن ابی یالا اور دیگر قضاء, قضاء کے قاضی کی جمع, قرض کی عدم ادائیگی کی حالت میں مقروض کو قید میں ڈالنے کا حکم دیتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ نے وقی کا بیان کیا, ہم نے اپنے قضاء ابن ابی لیلا اور دیگر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا جو قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے قید نہ کرتا ہو, یعنی یہ قید کرتے تھے. تبھی تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسلامی سزائیں بڑی انسانیت سوز ہیں, تو یہ لوگ ایسے غلط کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں. وہ جیسے کسی نے, شاید علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے نا, کہ کسی جگہ آئے ویسٹ میں, لائک آپ کہہ لیجئے یورپ آئے تھے, آپ کو پتہ ہی وہ لنڈن سے ان کا کچھ تھا تعلق پڑھنے پڑھانے کا, تو کسی نان مسلم نے آ کے ان کو ٹانٹ کیا, کہنے لگے اسلام کتنا غیر مہذبانہ دین ہے کہ چوری پر ہاتھ کٹوا دیتا ہے نا, چور کی سزا. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کے خیال میں چور کوئی بڑا مہذب شخص ہوتا ہے؟ یعنی آپ چور کی حمایت کر رہے ہیں اور اسلام کو برا کہہ رہے ہیں. تو جب ایسی سزائیں ملتی ہیں تو لوگ پھر اس چیز پہ رہتے ہیں. آخری ٹاپک ہماری آج کی نشست کا چھوٹا سا, کہ تنگ دست مقروض کو قید میں ڈالنا, اس کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں. علماء امت کی تنگ دست اور مفلس مقروض کو عدم ادائیگی کی بنا پر قید میں ڈالنے کے لیے جو رائے ہیں, ایک رائے عدم ادائیگی کی حالت میں اس کو بھی قید میں ڈالنے کی ہے, اور دوسری رائے کے مطابق یہ سزا صرف دولت مند مقروض کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ہے کہ ہر ایک کو ڈال دیا جائے گا, دوسرا وہ کہ جو دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا. امام خطابی اس کے بارے میں کہتے ہیں, اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ تنگ دست پر قید نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دولت مندی کی صورت میں قید کو جائز قرار دیا, اور مفلس کے ہاتھوں تمنگری نہیں, اس لیے اس پر قید نہیں ہے. اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے. شریخ دولت مند اور مفلس دونوں کو قید کرنے کے حامی تھے, اور یہی نقطہ نظر اصحاب رائے کا ہے. مالک اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تنگ دست پر قید نہیں, اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو مہلت دی جائے. شافعی کا مذہب یہ کہ جو ظاہری طور پر تنگ دست ہو اس کو قید نہ کیا جائے, اور جو تمنگر نظر آئے اس کو قرض واپس نہ کرنے کی صورت میں قید میں ڈال دیا جائے. اب دونوں باتوں کو جمع کر لیں تو یہ مفسر کہتے ہیں کہ میرے محدود فہم کے مطابق حدیث شریف سے امام خطابی کا استدلال کہ تنگ دست کو قید نہ کیا جائے درست معلوم ہوتا ہے. یہی رائے حضرت علی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حسن بصری بھی اسی پر فیصلہ دیتے تھے. امام بہکی نے ابو جعفر سے روایت کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, قید تو حقیقی صورت حال سے امام کی آگہی تک ہے, اس کے بعد قید میں ڈالنا ظلم ہے. یعنی جس نے نہیں دیا اس کی کنڈیشن کیا ہے, سرکمسٹانسز دیکھے جائیں گے. مراد یہ کہ ادائیگی نہ کرنے والے مقروض کو اس کی حقیقی صورت حال سمجھنے کی غرض سے قید کیا جائے گا. اگر معلوم ہو جائے کہ وہ تنگ دست ہے تو پھر اس کو قید سے نکال لیا جائے. ایسی حالت میں اس کو قید رکھنا حضرت علی کے نزدیک ظلم ہے, اور ان کا ادائیگی نہ کرنے والے مقروضوں کے ساتھ معاملہ بھی ان کے اسی فرمان کے متعلق تھا. تو بہرحال امام بہکی اس ساری روایت پر جو باب لاتے ہیں وہ کیا ہے؟ عدم ادائیگی کے, یعنی ادائیگی نہ کرنے کے الزام کی وجہ سے قید کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کی تنگ دستی کے معلوم ہونے اور اس کے بارے میں حلف اٹھانے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا. بات واضح؟ حضرت ابو ہریرہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, امام ابن شیبہ نے ابی المحزم سے روایت نقل کی کہ ایک شخص نے اپنے مقروض کو ابو ہریرہ کے پاس لے جا کر پیش کیا اور عرض کیا, احبس ہو, اس کو قید کروا دیجئے. انہوں نے فرمایا, کیا اس کا کوئی مال ہے کہ اس قرض کے عوض اس سے لے لوں؟ اس نے جواب دیا, نہیں. تو انہوں نے کہا, تجھے اس کی کسی جائیداد کا علم ہے کہ تیرے قرض کی رقم کاٹ لوں؟ اس نے کہا, نہیں. تو انہوں نے فرمایا, فما تريد, پھر تم کیا چاہتے ہو؟ مراد ہے کہ وہ تو بےچارہ دے ہی نہیں سکتا, نہ مال ہے نہ جائیداد ہے. اس نے کہا, احبس ہو, اس کو قید میں ڈال دیجئے. انہوں نے فرمایا, لا, نہیں, بلکہ میں تو اس کو چھوڑتا ہوں تاکہ وہ تیرے قرض کی ادائیگی اور خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمائے. جیل میں جائے گا تو کمائے گا نہیں نا, कहा नहीं, उसको आजाद करो, जाओ कमाए फिर दे। हसन बसरी के बारे में इमाम ने भी शैबा से रिवायत किया है कि हसन ने भी अबू हुरैरा वाला फैसला किया। तो सारी बात का खुलासा कि मालदार मकरूज के टाल मटोल की वजह से इस्लामी अदालत में इसके कैद में डाले जाने का हुक्म होगा, ताकि वो फौरी तौर पर इसकी अदायगी कर सके, और इसको कैद नहीं किया जाएगा जबकि पता चल जाएगा।